ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध से 21 नंबर अध्याय 18 नंबर श्लोक।
हंतायाम अधिर अबला हरिदास वर्यो यदा राम कृष्ण चरण स्पर्शा परमोदः मानं तनोति सहगो गणो यस्तयोर्यत पानीयासुरय सुयवसा कंदरा कंदामूलहे। सभी भक्तों में गोवर्धन पर्वत श्री गिरिराज जी महान है। हे प्रिय मित्रों, यह पर्वत
प्रिय सखियों फ्रेंड्स बट इट्स अबला दे गर्ल्स।
हे प्रिय सखियों, यह पर्वत कृष्ण और बलराम और उनके साथ उनके बछड़ों गायों गोपालों गोप सखाओं को सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है, जैसे पीने के लिए पानी, खाने के लिए नर्म घास, गुफाएं, फल फूल तथा सब्जियां। इस प्रकार से यह पर्वत हर प्रकार से भगवान की सेवा करता है और कृष्ण और बलराम के चरणों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत जो है बहुत ही प्रसन्न प्रतीत होता है। और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में से मध्य लीला 18वें अध्याय के 34वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने इसको उद्धृत किया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि गोवर्धन पर्वत का जो ऐश्वर्य है वो इस प्रकार है। पाणिया रेफर्स टू द फ्रेग्रेंस। पाणिय का अर्थ है कि खुशबू सुगंध और ठंडा जल जो गोवर्धन के झरनों से आता है, जिसे कृष्ण और बलराम पीते हैं और अपने पैर धोते हैं और मुंह धोते हैं। और गोवर्धन जो है वो और भी कई तरह के पेय पीने वाले जो पदार्थ हैं वो प्रदान करता है, जैसे शहद और आम का जूस, पीलू का जूस,
रस।
सुयवस का अर्थ है दुर्वा घास, जो धार्मिक अर्घ्य वगैरह के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। और गोवर्धन की जो घास है वो खुशबूदार नरम और गाय के खाने के लिए है, और जिससे गायें जो हैं वो सुदृढ़ बन जाती हैं और उनका जो दूध है इस घास को खाने से बढ़ जाता है। इस प्रकार यह घास जो है आध्यात्मिक है, और सॉरी इस प्रकार यह जो घास है ये आध्यात्मिक गायों को खाने के लिए उपयोग होती है। कंदरा रेफर्स टू द केव्स वेयर कृष्णा। कंदरा का अर्थ है कि गुफाएं जहां कृष्ण बलराम और उनके सखा खेल खेलते हैं, और यह गुफाएं आनंद देती हैं इनको सर्दी में और गर्मी में भी जब बाहर बारिश हो रही होती है। गोवर्धन की जो कंदमूल है वो भी खाने के लायक हैं और खाने में भगवान को आनंद देती हैं, और इसके जो आभूषण है इससे जो आभूषण ज्वेल्स वो शरीर को डेकोरेट सौंदर्य बढ़ाने के काम आते हैं,
श्रृंगार
श्रृंगार करने के, और इसके जो सपाट स्थल हैं, सपाट स्थल वो बैठने के काम आते हैं, और इसके जो लैंप्स हैं वो शीशे का काम करते हैं, जो फ्लैट स्टोन्स है, जो चमकदार पत्थर हैं, वहां पर भगवान उसमें अपना चेहरा देखते हैं, शीशे के रूप में उसका उपयोग करते हैं, और जो ग्लिस्टनिंग वाटर है, बाकी जो दूसरे अन्य प्रकार के जो पानी है उसका उपयोग दूसरे प्राकृतिक चीजों के लिए किया जाता है।
हरे कृष्णा। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में गोवर्धन गिरिराज का वर्णन है, जिनका दर्शन मैं करता हूं, और आप सब बैठ रहे हैं आपके फीट गोवर्धन के मुखी है, ऐसी व्यवस्था है। तो ये श्लोक जो श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद है, जिसमें श्री गोवर्धन गिरिराज का वर्णन और प्रशंसा है, तो किसने बताया? गोपियां, ब्रज की गोपियां आपस में भगवान श्री कृष्ण गुणगान करते हैं, और विशेषकर ये श्लोक में गोवर्धन की प्रशंसा करते हैं। तो बहुत सारे यात्रियां हैं जो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, करके क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण बोलते हैं, बोलते हैं हरे कृष्ण, ज्यादातर राधे राधे बोलते हैं। क्यों राधे राधे बोलते हैं, हरे कृष्ण नहीं बोलते? हरे कृष्ण बोलने से हम क्या समझते हैं? हम राधा और कृष्ण दोनों से हम प्रार्थना करते हैं सेवा करना का मौका के लिए, और अधिकांश यात्रियों भक्तों जो यही सबसे पवित्र व्रजमंडल में आते राधे राधे बोलते। क्यों राधे राधे बोलते? क्योंकि राधा परम सेविका है श्री कृष्ण की, और सब गोपियों में वे ही श्रेष्ठा है। तो राधा श्रेष्ठ है क्यों? व्रजवासियों, अब पूरा जगत में हम जगन्नाथ की प्रशंसा करते हैं, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वंती दिव्याय स्तवाय, सब बड़े बड़े देवगण भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, इनकी भक्ति करते हैं, क्योंकि कृष्ण सब देवताओं के ऊपर है, देवों से पूजित है कृष्ण, देव देव जगत पते, जगन्नाथ हे कृष्ण, शिव के ऊपर भी है कृष्ण। तो शास्त्र में एक उपदेश है, माता पार्वती एक बार इनके स्वामी शिव शंकर से पूछी कि मैं देखते हूं कि पूरा जगत में, पूरा विश्व में शिव जो विश्वनाथ है, इनसे पूछी पार्वती, मैं देखते हूं कि बहुत प्रकार की पूजा होती है, बहुत प्रकार की आराधना होती है ये विश्व में, कोई कोई आपकी पूजा करते हैं, कोई कोई मेरी पूजा करते हैं, कोई कोई इंद्र चंद्र वरुण की पूजा करते, कोई कोई भूत प्रेत की पूजा करते हैं, तो सभी प्रकार की आराधना में कौन सी आराधना श्रेष्ठ है? यही पार्वती माता का प्रश्न था। और शिव शंकर उत्तर में बताया, क्या बताए आप सब जानते हैं नहीं? आराधनानं सर्वेशं विष्णुर आराधना परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानं समर्चनम्। सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है? भगवान विष्णु की, क्योंकि परम देवता है श्री विष्णु, और उससे और भी परम है, परतरम भगवान विष्णु के भक्तों की सेवा। तो व्रज गोपियां सभी भक्तों में श्रेष्ठ है। श्री सनातन गोस्वामी जो प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा की, उन्होंने इनकी बृहद भागवत अमृत में और सभी मुख्य मुख्य भक्तों की भक्ति का वर्णन किया, और इस प्रकार वो भक्ति में तारतम्य जो है, क्रम जो है, कौन श्रेष्ठ भक्त है, इन्होंने बृहद भागवत अमृत में निर्धारण किया कि सर्वश्रेष्ठ भक्तों है व्रज गोपियां, क्योंकि वे पूरा प्राण से निर्विचार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। और गोपियां में सर्वश्रेष्ठ है श्री राधा, और इसलिए ब्रजवासियों राधे राधे बोलते। और हम श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार हम हरे कृष्ण बोलते, क्योंकि हम राधा और कृष्ण दोनों की आराधना करना चाहते हैं। तो गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि वे पूरी तरह भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। और व्रज गोपियां का विचार है कि हरिदास वार्य श्रेष्ठ हरिदास है, श्रेष्ठ भक्त है श्री गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन तो सभी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला पोषण करते हैं। जाओ वनस्पति फलों के रास सब कुछ देते हैं, गुफाओं देते हैं भगवान श्री कृष्ण, और इनके भक्तों का आनंद का वर्धन के लिए, इसलिए गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तों है गायन, इसलिए श्री कृष्ण का नाम है गोपाल गोविंद, और इसलिए गोवर्धन का नाम वही है गोवर्धन। तो गायन के पालन पोषण करते हैं श्री गोवर्धन, और इसलिए गोवर्धन पूजा है। लगता है ऐसा पूजा नहीं होनी चाहिए, आधुनिक अंदाज की पूजा। ऐसा कीर्तन होते आधा आध्यात्मिक और आधा बॉलीवुड का अंदाज, हाइब्रिड। तो गोवर्धन ये शब्द से हम समझ सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में कितना महान है, कितना महत्वपूर्ण है गो सेवा, गोरक्षा, गोवर्धन करना। तो ये गोवर्धन मथुरा जिला में है नहीं, और कुछ जो वो पुचारी में कुछ राजस्थान में भी है, वो सब भारत में है नहीं, हिंदुस्तान में है नहीं, सब हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में है नहीं, है कि नहीं, या पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, हाँ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान कैसे हिंदुस्तान है, हाँ कैसे हिंदुस्तान हिंदुस्तान होते है, हिंदुस्तान का नाम क्या है, भारत, भारत, और कुछ भक्त तो नेपाल से आया है, आपकी टूपी से ही समझ सकते हैं, नेपाली है, और प्राचीन पौराणिक इतिहास में नेपाल भारत सब भारतवर्ष है, सब भारतीय संस्कृति वो सब स्थानों में जिसमें भारतीय संस्कृति चलते है उसको भारतवर्ष बोलते है, ये पौराणिक शब्द है, और पाकिस्तान भारत नहीं था, अभी तो पाकिस्तान हो गया है, खंडित हो गया है, क्यों खंडित हो गया है तो वो बहुत लंबा इतिहास है, तो हिंदू जो हिंदुस्तान में जो थे लगभग तो सभी तो अभी देहांत प्राप्त हो गया है, जो उसी समय थे तो चाहते थे ऐसा स्थान ऐसा देश जिसमें हम प्राचीन पुरानी भारतीय संस्कृति पालन कर सकते हैं, और दूसरे लोग थे जो अलग प्रकार की संस्कृति पालन करने चाहते थे, इसलिए भारत खंडित हो गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में एक बड़ा अंतर होना चाहिए, और इसलिए वो आयरन मैन सरदार पटेल और बहुत सारे लोग बहुत संघर्ष करके भारत की स्वाधीनता स्वराज मिले, और उनका उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश शासन हो रहा है तो यदि हम स्वराज्य करेंगे तो हम अपनी संस्कृति पालन कर सकते हैं जिसमें गोवर्धन गौ रक्षा मुख्य है नहीं, और लोग जो पाकिस्तान बनना चाहते थे खस को हत्या करने चाहते थे, तो यही एक मुख्य कारण था जिससे भारत खंडित हो गया है, हिंदू धर्म मुसलमान धर्म और दोनों में भेद है, एक मुख्य भेद है कि हिंदू लोग तो गौ रक्षा गौ सेवा करने चाहते हैं और मुसलमान तो गौ हत्या करते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा था हम क्या पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में है, हाँ अभी बहुत 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 लंबी प्रतिमा प्रतिष्ठित हो गया है नर्मदा के पास, तो सरदार पटेल क्या सुखी होंगे या असुखी होंगे आधुनिक हिंदुस्तान की परिस्थिति से, इतना ज्यादा संघर्ष किया है जिससे स्वराज होगा और उसका फल है कि पाकिस्तान में गौ हत्या होती है और हिंदुस्तान में भी, तो क्या फायदा हुआ, हाँ तो हमें क्या करना चाहिए, यदि हम गोवर्धन करना चाहते हैं हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ भारत आंदोलन हो रहा है ना, वो सब जो गोवर्धन के पास आते हैं तो गुटखा पैकेट सुपारी गुटखा अभी तो मना है तो सुपारी उसको खोल के गोवर्धन के ऊपर फेंकते, स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ कैसे स्वच्छ होगा, तो पहले मन स्वच्छ होने चाहिए। और ऐसे देश में जिसमें गौ हत्या होते है, तो कैसे मन स्वच्छ हो सकता। ये सबसे बड़ा प्रदूषण है दिल्ली। वो अभी तो पूरा दुनिया में न्यूज में आते दिल्ली में, किस लिए? प्रदूषण, हवा का प्रदूषण। तो उससे और भी खराब है मन का प्रदूषण, जिसमें हम गर्व से कहो कहते हैं हम हिंदू है, लेकिन कितने साल हो गया, 47 साल के ऊपर भारत की स्वाधीनता है और अभी तक गौ हत्या चलती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अभियान करना चाहिए, किस प्रकार राजनीतिक हमें क्या करना चाहिए जिससे गौ हत्या बंद होगा और मूल भारतीय संस्कृति पुनर्स्थापित होगी। कैसे संभव होगा? हम क्या पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, वो आप दिल्ली जाइए कितनी नारी साड़ी पहनते, सब सलवार कमीज पहनते या जीन्स टी शर्ट पहनते, लेगिंग्स पहनते। तो इसलिए भारत की स्वाधीनता तो हुई। सलवार कमीज पहनते तो पाकिस्तान में होना चाहिए, हिंदुस्तान में नहीं। इसलिए कम से कम यही सब श्रवण कीर्तन शिविर में हम एक नियम बनाते हैं कि सांस्कृतिक पोशाक पहनना है। और ऐसे है दिल्ली में वो सब युवा ऐसे ही, वो माता जी जो साड़ी पहनते है तो वो नीच नीचे हो जो साड़ी पहने, गांव के लोग हैं ऐसे सोचते। हम प्रगत प्रगति प्रगति होने चाहिए ना, वो सरकार चाहते देश का विकास होगा, प्रगति। प्रगति क्या है? गोवर्धन से नहीं, फैक्ट्री वर्धन से। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? गौ हत्या बंद करना नहीं, बड़ा बड़ा एक्सप्रेसवे बनाना, बुलेट ट्रेन बनाना। तो ऐसे क्या लाभ होगा? अगर हम बुलेट ट्रेन में जाएंगे और यो क्रैश हो जाएगा, फिर हम किस प्रकार शरीर में लेंगे, इसके बारे में कोई सोचते नहीं, कोई नहीं सोचते। सब स्कूल कॉलेज में विकास 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 यही सब चलते। विकास क्या है? विकास है यद्गद्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हमें भक्ति करने चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा, जिससे हम भगवान के धाम जाएंगे और वहां से हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अमेरिकास्तान में हम किसी भौतिक स्थान में लौटे नहीं आएंगे। यही प्रगति है। तो हमें क्या करना चाहिए? देश की परिस्थिति बहुत बहुत खराब है, मैं कई बार बोला कि परीक्षित महाराज कलयुग का आरंभ है। परीक्षित महाराज एक बार देखा कि एक धुरता व्यक्ति एक गाय को परेशान दे रहा था, मारता था, और वो अपराध के लिए परीक्षित महाराज वो धुरता जो काली राजा था, वो काली राजा का वध करने के लिए तैयार थे। तो ऐसे राजा होना चाहिए, आजकल सरकार के द्वारा नया नया कत्लखाना स्थापित होते, तो कैसे खाली राजा का राजा हो रहा है? स्वराज्य है वो क्या है? काली का राज्य। कौन सबसे शक्तिमान है दुनिया में? ट्रंप, नरेंद्र मोदी भारत में सबसे बड़ा है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा राजा कौन है? लगते है नंबर वन है ट्रंप, नहीं? और दो नंबर है पुतिन रशिया या चाइना में जो भी नाम हो, और मोदी बहुत बड़ा है नहीं दुनिया में, वो सबसे बड़ा है काली राजा। और ट्रंप आया है और कुछ दिन के बाद जाएगा, पुतिन है और कुछ दिन के बाद जाए, लेकिन काली राजा वो अपने सिंहासन में बैठ रहा है और हंसते हैं, मेरा काल आ गया है। तो हमें क्या करना चाहिए? काली राजा का प्रभाव हटाने के लिए हम कुछ कर सकते? हम क्या करेंगे इसके बारे में हमें सोचना चाहिए? नहीं, परिस्थिति इतने खराब है कि हिंदुस्तान में भी गौ हत्या होती है, युवा फ्री सेक्स युवतियां तो निशुल्क वेश जैसे है, शराब पीना सब जगह में है, गुजरात में निषेध है, नहीं सब जगह में है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम एक नया पार्टी बनेंगे क्या? नया पार्टी बनेंगे और प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे? चैतन्य महाप्रभु दास प्रधानमंत्री, उससे फायदा होगा। आशा है कि हम नया पार्टी बनाने से पूरी परिस्थिति बदलेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? दिल्ली चलो मर्च करो। ऐसे वो विज्ञापन लगाना, गौ हत्या बंद करो, पुरानी संस्कृति पालन करो, उससे फायदा होगा? कुछ नहीं। कितने सारे लोग ऐसे खिलाफ करते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता। तो क्या करना चाहिए? कलेर दोष निधे राजन, ये कली युग एक पूरा दोष का सागर जैसे है, जैसे एक मछली जो सागर के बीच में है, अगर ऊपर जाएगा तो खाली क्या मिलेगा? जाओ, नीचे जाएगा जाओ मिलेगा, सभी दिशाओं में जाओ है, और अगर वही रहेगा तो जाओ में है। तो ऐसे काली युग में तो सब देश में पाप आचरण पूरा फैला हो गया, सब देश में और समाज के सभी क्षेत्रों में। जैसे आप समाचार पत्र देखते हैं, वो बच्चे जो शोर करते हैं, बंद करो, समाचार पत्र में क्या है? वो सब समाचार कलयुग का समाचार है, सुसमाचार कुछ नहीं है सब। और कभी कभी अच्छा समाचार भी होते नहीं, जैसे इंडिया तो क्रिकेट में विजय हो, वो भी खराब समाचार है। तो भारतीय लोग जो बहुत दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया भारत में, और ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके उनका जीवन तो केवल भगवान की भक्ति के लिए अर्पित होने चाहिए, तो क्रिकेट खेलते। तो क्रिकेट वो सब काली राजा का खेल है। तो समाज में न्याय मंदिर में, न्याय मंदिर का उसको न्याय मंदिर कोर्ट कोर्ट अदालत न्याय मंदिर बोलते हैं, जिसमें जिसमें पूरा अन्याय चलते है। न्याय का नाम से अन्याय चलते है। तो कलयुग में सब कुछ दोषपूर्ण है, क्या करना चाहिए कोई उपाय नहीं, हम क्या करेंगे, आत्महत्या करेंगे, वो भी पाप है, तो हमें सहना पड़ेगा। सहना नहीं, हमें क्या करना चाहिए, खले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगा परं व्रजेत। कलयुग में एक उपाय है काली का प्रभाव से मुक्त होने के लिए, वो क्या है, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलाओ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। काली युग में कोई दूसरा उपाय नहीं चलेगा। अग्नि अग्निहोत्र यज्ञ हम ठीक से नहीं कर सकते, और कलयुग में उससे ज्यादा प्रभाव नहीं होते। ध्यान, हम योग्य नहीं है ध्यान करने के लिए, और यदि कोई दुर्लभ साधु है जो अच्छी तरह ध्यान कर सकते तो ऐसे बैठ के ध्यान करते हैं, और पास में ऐसे बॉलीवुड म्यूजिक बजाएंगे जिससे उसका ध्यान टूट जाएगा। और यदि हिमालय के गुफा में जाएगा पूरी शांति में ध्यान करने के लिए, तो वहां भी कुछ लोग आएंगे और हॉलीवुड म्यूजिक बजाएंगे। यही परिस्थिति है। तो ध्यान यज्ञ पुण्य कर्म पूरे देश में कोई भी व्यक्ति पुण्य कर्म अच्छी तरह नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा देश में जिसमें गो हत्या चलते रहते हैं, ऐसा देश में कुछ भी पुण्य कर्म करना संभव नहीं है। जितने भी दान आप करते हैं, जितने भी तीर्थ यात्रा आप करते तो सब दूषित होते हैं। गौ हत्या का दोष है, और गौ हत्या तो खाली एक दोष है, खले दोष निधि। खाली योग तो पूरा सागर जैसे दोष का सागर है। तो खाली एक उपाय है काली का प्रभाव दमन करने के लिए, वो है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और केवल हमारे अपनी परिस्थिति में कल्याण नहीं होगा, तो हरि नाम करने से पूरा जगत का उद्धार हो सकते। नाम होते हुए सर्व जगत निष्ठा, पूरा जगत का निष्ठा हो सकते कलि युग में. कलि युग तो 427,000 सालों व्याप्त होते और उसमें 10,000 सालों में भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक सोना युग हो सकते हरिनाम के द्वारा, हरिनाम के द्वारा और श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत की चर्चा से. हम कलयुग का घर अज्ञान से हम मुक्त हो सकते. कृष्णे स्वधाम भगते धर्म ज्ञान अदिभि सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणा को धुनोदित. भगवान कृष्णा, जब तक भगवान कृष्णा ये पृथ्वी पर स्वयं उपस्थित थे तब तक धर्म ज्ञान पुण्य इत्यादि रहते थे इनके साथ, क्योंकि भगवान कृष्णा धर्म की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है, पुण्य की मूर्ति है, साधन साध्य की मूर्ति है. भगवान कृष्णा सब सद्गुण मूर्तिमान है. तो भगवान कृष्णा द्वापर युग का अंतिम क्षण में अपने धाम गोलोक वृंदावन वापस चला गया और उसी क्षण में कलि युग का आरंभ था, कलि राजा का प्रभाव का शुरू था. और कलि युग में हर एक दिन में कलि राजा का प्रभाव बढ़ते रहते. तस्चानुदिनम धर्म सत्यम सूक्ष्म क्षमादय कालेन बलिना राजन नंक्षन्तायुर्बलं स्मृति. कलि राजा का प्रभाव का फल है कि हर एक दिन में सब सद्गुण कम जाते, जैसे धर्म सब सद्गुण सब संकलित है एक शब्द में धर्म. और हम स्वयं अंकों से देख सकते हैं तो कैसे इस जीवन में हम सब देखते ही नहीं. तो कई हम जब छोटे थे और अभी तो कितना बड़ा अंतर हो गया, संस्कृति धर्म कितना नीच हो गया है. तो प्रतिदिन धर्म का ह्रास होता है ऐसे कलि युग का प्रभाव से. तथाचानुदिनम धर्म सत्यम शोचम क्षमा दया आयु बल शारीरिक बल और मानसिक बल स्मृति. कलि युग में प्रतिदिन ये सब सद्गुण कम जाते और पाप ईर्ष्या हिंसा अधर्म बढ़ते रहते, यही कलि युग है. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें शरण लेना चाहिए भगवान और भगवान के भक्तों के चरण में, कृष्ण भगवान के चरण में. वो संभव है विशेषकर हरि नाम के द्वारा और श्रीमद् भागवत के द्वारा. हरि नाम के द्वारा क्योंकि हरि नाम हरि है, Jainam Shri Krishna Bhaja Nishta Kare. Name Shahid Apane Shri Hari. Bhagavan ka naam Swayam Krishna hai. Aur Krishna naam ucharan karna bahut saral hai. Naam ucharan karne ke liye pandit hona ki avashyakta nahi hai. Aur punyavan hona uska bhi avashyakta nahi hai. Jaise hum jo yahi janm mein paschatya deshon mein janm liya hai, to paschatya deshon lene se hum papi hote. To aise desh mein janm lena ka arth hai ki purv janmon mein hum papi the, isliye hum waise desh mein janm liye the jisse paap hi sanskriti hai. Mangs khana, mangs, machli, anda, wo sab khana paschatya desh ki sanskriti hai. Sharab pina aur sharab ke alawa bahut prakar ke nasa lana wo hi sanskriti hai. Vyabhichar karna wo hi sanskriti hai. Samling vyabhichar udacha hai paschatya sanskriti mein. Aur jua karna wo sab wo hi sanskriti hai. Bharat mein bhi aisa abhi ho rahe hain. Kas paschatya deshon mein? To hum punya, puri tarah punya hind. Bharat mein sanskriti itna kharab hote hue bhi, to aaj tak itne sare log aate hain govardhan parikrama karne ke liye. Bharatiya sanskriti to abhi tak chalti hai. Lekin paschatya deshon mein to waise nahi hai. To hum jo pura punyahin the, hum bhi Hare Krishna bol sakte. Srila Prabhupada ki kripa se. To yahi praman hai ki Hari naam karne ke liye punyavan hone ka jarurat nahi hai. Yadi Prabhupada ki kripa hoti hai jo, to hum bhi yogya ho sakte Hari naam bolne ke liye. To bahut saral upay hai Hari naam, aur visheshkar Chaitanya Mahaprabhu ki kripa se. Hari naam karne se sarva jagat nista. Aisa koi vyakti nahi hai jagat mein jo itna bada papi hai jo Hari naam nahi kar sakte. Chaitanya Mahaprabhu aur inke bhakton tayar hai sabko grahan karne ke liye. Keval tayar nahi hai, ve prachar karte sabko. Dino hino jato sabko batate Hari naam karo, Hari naam karo. Dino hino jato chilo Hari naame udharilo. Ta sakshi jagai madha. To aaj ka aur vishesh ka paschatya deshon mein jagai madhai agar aate hain to log batenge to bahut acche log hain. Sharab pite hain, dusron ko marte hain, acche log aisa hal ho gaya. To Hari naam aur Srimad Bhagavat. Srimad Bhagavat bhi Shri Krishna se abhinna hai. Granth ke roop mein Bhagavat, kyunki har ek shabd mein, har ek shlok mein, har ek akshar mein keval Bhagavan Shri Krishna ka varnan hai, inki prashansa hote hai, इनके बारे में ज्ञान है, भगवत तत्व विज्ञान। तो भगवान और भगवान की गुणों इनसे और दोनों एक ही है। तो श्रीमद् भागवत पुस्तक के रूप में भगवान है, और विशेषकर श्रीमद् भागवत में कृष्ण और कृष्ण का वर्णन, कृष्ण के भक्तों के वर्णन के अलावा और कोई दूसरा विषय नहीं है। अन्य ग्रंथों में कुछ, जैसे पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कुछ स्थान में कृष्ण का वर्णन होते, कृष्ण की प्रशंसा होते हैं, और एक ही ग्रंथ में अलग स्थान में ब्रह्मा की स्तुति होती है या गणेश की स्तुति होती है। श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक केवल भगवान श्री कृष्ण की गुणगान है, और पूरा स्थापित होता है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो परम सत्य ज्ञान है। प्रथम श्लोक में श्रीमद् भागवत में कि श्रीमद् भागवत परम सत्य ज्ञान है, यही वचन है, और वो परम सत्य कृष्ण ही है। चैतन्य महाप्रभु सारा भाषा में बताए, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद भेद प्रकाश। तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में बहुत पंडित थे, आजकल तो कोई पंडित नहीं है। पंडित का मतलब जो शास्त्र ज्ञानी है, और पंडितों के भिन्न भिन्न मत होते हैं। ना सब विषय यस्य मतं न भिन्नम्, तो इस प्रकार षड दर्शन होते हैं, संख्या दर्शन, योग दर्शन और वैशेषिक दर्शन, खनाद का दर्शन, पूर्व मीमांस वो है, और उत्तर मीमांस जो वेदांत है। तो बहुत अलग अलग प्रकार के मत, अलग अलग प्रकार के पंडित है, और अवैदिक पंडितों भी, जैसे बुद्ध, बुद्ध मत, बोध, बुद्ध मत अवलंबी है, और चार्वक जो बोलते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होते हैं, जब तक जिंदा हो तब तक खुशी रहो, लगते ही वो चार्वक का प्रभाव आजकल सबसे बड़ा है भारत में, पूरे दुनिया में। तो चार्वक का दर्शन और ऐसे अलग अलग दर्शन एक थे, और वास्तविक सत्य क्या है जो चैतन्य महाप्रभु हमको बताए, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत का स्पष्ट उपदेश है कि जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम सब जीव है। भगवद गीता में पहला उपदेश है क्या है कृष्ण का, कि जीव सनातन है और जड़ असनातन है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। हम सनातन जीव है, और ये शरीर जो पिंजरा जैसे है उसके अंदर हम है, लेकिन हम शरीर से भिन्न है। तारक नहीं, ऐसी शिक्षा होती है नहीं है, आप सब स्कूल कॉलेज गए हैं, नहीं स्कूल में ऐसी शिक्षा मिली नहीं, क्या शिक्षा मिली? तो पढ़ाए पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स. अपने को बड़ा बनाओ सक्सेसफुल बनाओ. लेकिन कि मृत्यु के बाद हम ऐसे शरीर मिलेगा यही जीवन का काम के फल के अनुसार वो शिक्षा किसी को कॉलेज में नहीं मिलते. ये आधुनिक भारत है. तो चैतन्य महाप्रभु बोलते जीव है स्वरूप. हम जीव है. हम जीव है मतलब ये शरीर का मृत्यु के पश्चात भी हम रहेंगे. तो हम कैसे रहेंगे? 84 लाख का जीव जाती है नहीं तो क्यों हम कभी कभी मनुष्य शरीर मिलते कभी कभी उनका शरीर मिलते कभी कभी कृमि का शरीर मिलते. कृष्ण की विस्मृति जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास. तो हम सब कृष्ण के दास है. परंतु कृष्ण भूली से जीव अनादि बाहिमुख अथैव माया तारे दया संसार दुख. संसार दुख तो पहले समझना चाहिए कि जगत दुखमय है. ये सब चार बात जो चलते है तो जब तक जिंदा रहते हो तो तब तक एंजॉय इंद्रिय तर्पण करो. ऐसा प्रचार नहीं होना चाहिए. हम नया नया एक्सप्रेस वे बनेंगे फैक्ट्री बनेंगे लंबी लंबी प्रतिमा बनेंगे ये सब प्रगति नहीं है. इससे दुर्गति होती है. तो हमें समझना चाहिए कि हम सनातन जीव है और हम 84 लाख जीव जाति संसार चक्र में फंस गए हैं. हमारा सनातन संबंध है कृष्ण के साथ और इसलिए हमें कृष्ण सेवा करने चाहिए क्योंकि कृष्ण की विस्मृति ये संसार बंधन का मूल कारण है. तो ये सब ज्ञान हम मिलते हैं श्रीमद् भागवत से. तो सबको बताना चाहिए हरि नाम करना और साथ साथ भागवत गीता और श्रीमद् भागवत का ज्ञान सबको देना चाहिए. देखिए इतने सारे लोग यहाँ आते हैं और गोवर्धन परिक्रमा करते हैं वो बहुत बढ़िया है. लेकिन अज्ञान का कारण से तो वापस गांव जाते हैं और पूरा संसारिक कार्य फिर शुरू करते हैं. तो यहाँ पर भी तो यहाँ आते हैं और सेल्फी करते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और पीछे गोवर्धन सेल्फी ऐसे बनाते हैं. हम अपने गांव में इंद्रिय सुख करते हैं और गोवर्धन में भी हम इंद्रिय सुख करते और परिक्रमा के बीच में कुछ प्यास होते तो चाय स्टॉल भी है ना चाय का जो का ये चाय पीना ये क्या भारतीय संस्कृति है? हम श्रीमद् भागवत से हम क्या पता मिलते है कि और रासलीला के बीच में टी ब्रेक होते ऐसा होता है? नहीं. हम चाय भगवान को अपन अपन कह सकते हैं लेकिन भगवान कृष्ण तो दूध पीने वाले है नहीं चाय पीने वाले नहीं. इसलिए गोवर्धन गौ सेवा होने चाहिए. और ऐसा नहीं है कि गौ हम गौ सेवा करते हैं और ऐसे गौ माता से कुछ दिन हम दूध मिलते और वो गौ माता थोड़ा वृद्ध होने के बाद हम कतले खाना को बेचते और दूसरी गाय लेके गौ सेवा करते, वो तो गौ सेवा नहीं है। तो हमारे कृषि गौ रक्षा प्रकल्पों से हम व्यवहारिक रूप से सबको दिखाना चाहते। तो कैसे आजकल भी हम भगवान कृष्ण का स्वयं का अंदाज जैसे हम सुख और शांति में रह सकते। तो ये हरे कृष्ण आंदोलन जो श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार चलते हैं, तो इसमें हरि नाम करना मुख्य है। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यतः। सबको हरि नाम करो बताना चाहिए। और भगवद गीता का यथारूप ज्ञान, श्रीमद् भागवत यथारूप वो ज्ञान का परिवेशन होना चाहिए और चैतन्य चरितामृत भी। और कृषि गोरक्षा प्रकल्प भी बनाना चाहिए। ऐसा है कि बहुत गृहस्थ भक्त है जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से और हरि नाम करने में कुछ रुचि मिले, परंतु उनका जीवन शैली ऐसे है कि अधिकांश समय उनको असत्संग में रहना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु का एक मुख्य उपदेश है असत्संग त्याग ऐ वैष्णव आचरण। तो वैष्णव का आचरण में प्रथम है असत्संग त्याग करें, क्योंकि असत्संग में बहुत कठिन होते कृष्ण भक्ति करना। जैसे यदि हम ये हमारा हेयर स्टाइल है ये, लेकिन यदि कोई गृहस्थ भक्त तो ऐसे मुंडित होना, छोटी रखना, ऐसे ऑफिस और तिलक लगा के ऑफिस जाना चाहते तो मना होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ काम के लिए आया है, धर्म के लिए नहीं, अलाउड नहीं है। और यदि कॉफी ब्रेक में तो एक माला जाप करना चाहते, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत कठिन है। आधुनिक युग में कृष्ण भक्ति करना अच्छी तरह करना कठिन है, क्योंकि असत्संग सब जगह रहे हैं। कले दोष ने थे राजा, और ये सब दोष होते, दोष का सागर होते है, क्योंकि आज का वो समाज जो सागर जैसे में, तो सागर में सब माच ले तो दोषी है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तो सभी परिस्थिति में कृष्ण भक्ति करना संभव है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, खाते सुते जथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। जैसे अग्निहोत्र यज्ञ करने के लिए देश काल पात्र विचार होते, काटला खाना में अग्निहोत्र यज्ञ करना संभव नहीं है, अशुद्ध स्थान में करना संभव नहीं है। परंतु आजकल तो पूरा देश खाटला खाना हो गया नहीं, कितने सारे गायों की हत्या होती है। तो हरि नाम हम कह सकते सभी जगह में और सर्व सिद्धि मिल सकते हैं, परंतु सामान्य परिस्थिति प्रतिकूल है भक्ति करने के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद की इच्छा और मार्गदर्शन के अनुसार हम प्रयास करते हैं कुछ वर्ण आश्रम, कृषि गौरक्ष प्रकल्प बनाना, जिसमें हमारे गृहस्थ भक्तों तो सरलता से जीवन व्यतीत कर सकते और निष्पाप जीवन व्यतीत कर सकते और भक्तों का संग में पूरी साधना कर सकते, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करना, मंदिर जाना, कीर्तन करना, श्रीमद् भागवत श्रवण करना, तो ये सब सुविधा उपलब्ध है हमारे ब्रह्मचारियों के लिए हमारे सब मंदिर में। तो आज का उपलब्ध गृहस्थों के लिए भी ये सब वर्णाश्रम समुदाय में, और ये सब कृषि को रक्षा प्रकल्प से हम प्रचार करना चाहते सबको कि ऐसा राक्षस का अंदाज जैसे जीवन व्यतीत करने का कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ रह सकते और कृष्ण भक्ति कर सकते। तो इस प्रकार हम प्रचार करना चाहते, हम यहाँ आए हैं, हमारा पांच दिन का शिविर यही प्रवचन से आरंभित हो गया है। हम निज निकट निवास दही गोवर्धन, हम श्री गोवर्धन के निकट भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त श्रील प्रभुपाद की गुणगान करने के लिए, कीर्तन करने के लिए यहाँ आए हैं। श्री गोवर्धन है हरिदास भार्य, और इनसे हम आशीर्वाद मिलना चाहते कि हम चैतन्य महाप्रभु की इच्छा के अनुसार, श्रील प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार तो भक्ति शक्ति मिलेगी, तो पूरे दुनिया में हरि नाम और श्रीमद् भागवत का प्रचार करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में सभी भक्त प्रचारक होने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में एक भक्त को भक्ति प्रदान करके बताए, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु होया तारो ए देश। तो वो भक्त को बताए तो सबको कृष्ण उपदेश प्रचार करो और गुरु बन जाओ और इस प्रकार अपने देश का उद्धार करो। तो वो भक्त हो नया भक्त तो खाली दो तीन दिन चैतन्य महाप्रभु के संग में था, तो फिर भी ऐसे भक्त को चैतन्य महाप्रभु को बताया हरि नाम प्रचार करो, कृष्ण उपदेश भगवद गीता प्रचार करो। तो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में तो सभी भक्त प्रचारक होने चाहिए। कुछ भक्त प्रचार करते हैं मौखिक प्रचार, प्राणार अर्थ ध्यावाचा, जो मुख से कृष्ण उपदेश प्रचार करते हैं तो वचन से प्रचार करते हैं, और जो प्रचार का अभियान की सहायता करते हैं तो वे भी प्रचारक होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीमद् भागवत की युक्ति है प्राणार्थ ध्यावाच, तो पूरा प्राण उत्साह करके यदि कोई कृष्ण भक्ति कर सकते है वो उत्तम है। और उसके बारे में सव्यसाची प्रभु आए हैं, सव्यसाची हाँ, ओ कैसे ब्रह्मचारी बनाना, पूरा जीवन उत्साह करना, आज शाम को कुछ कहेंगे। तो पूरा प्राण देने से आप प्रचार कर सकते हैं, प्राण अर्थ, अर्थ का मतलब पैसा, तो अर्थ उत्साह करने, अर्थ देने से आप कृष्ण भक्ति प्रचार में अंश ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ये सुंदर पंडाल बनाने के लिए पैसा देना है, प्रसाद वितरण के लिए, पुस्तक मुद्रित करने के लिए, तो ये सब के लिए पैसा चाहिए। और आप आपका जीवन धन्य बन सकते अर्थ की सेवा से, प्राण अर्थ दिया आपकी बुद्धि से आप कृष्ण सेवा कर सकते, विशेषकर श्रीमद् भागवत और भगवद गीता का अध्ययन करने से आप भक्ति कर सकते। तो ये पांच दिन का श्रवण कीर्तन शिविर आयोजित है इसी अर्थ से कि हमारे आशा है कि आप सब गोवर्धन श्री राधा कृष्ण ब्रजवासियों चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद की कृपा से शक्ति भक्ति शक्ति से संचारित होंगे और ज्यादा तेज से आप अपना अपना स्थान लौटे जाके और विशेष उत्साह से भक्ति प्रचार करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे।